and welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Living Values, इस श्रृंखला में आज जिस वैल्यू जिस मूल्य की हम बात करने जा रहे हैं उसकी बहुत कमी हमें दिखती है, हमें नजर आती है अपने समाज में, और वो मूल्य है टॉलरेंस, यानी कि सहनशीलता या फिर सहन शक्ति। कहीं ना कहीं चारों तरफ हमें लगता है कि टॉलरेंस कम होती जा रही है, व्यक्ति या इंसान सहनशील रह ही नहीं गया। और उसकी तरफ दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये सवाल उठता है कि मैं ही सहन क्यों करूं, कब तक बर्दाश्त करूं, क्यों बर्दाश्त करूं, क्यों जरूरी है टॉलरेंस आज हम में से हर एक में, क्यों हमें अपने बच्चों को आने वाली जनरेशन को भी ये मूल्य ये आदर्श देना बहुत जरूरी है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ माउंट आबू से खास हमारी मेहमान ब्रह्मा कुमारी शीलू बहन जी हैं। आपका स्वागत करते हैं हम। और शीलू बहन जी, जैसा कि हमने ये कहा कि कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में हमारे पूरे समाज में सहनशीलता की कमी दिख रही है, हम सहन ही नहीं कर सकते। हम एक तरफ हम दूसरे की सक्सेस सहन नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हमें उसका छोटी सी बात सहन नहीं हो रही। हमारा गुस्सा इतना नाक पर बैठा है कि थोड़ी सी भी पेशेंस या टॉलरेंस नहीं नजर आ रही। क्यों ऐसा हो गया है कि समाज में आज ये मूल्य इतना गिर गया है?
सचमुच ये मूल्य आज इतना गिर गया है कि हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा इतनी कमजोर हो गई है। और टॉलरेंस या सहनशीलता, जिसे सहन शक्ति कहते हैं, ये बहुत बड़ी शक्ति है। अब मैं मेरे अंदर समझो शक्ति नहीं है, बहुत कमजोर हूं मैं, और मैं चाहूं कि मैं 20 किलो का वजन उठाऊं, कैसे उठा सकूंगी, शक्ति नहीं। मैं चाहती हूं कि मैं बहुत 10 मील चलूं, लेकिन टांगों में ताकत ही नहीं है तो कैसे चल सकूंगी। तो हम चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अंदर में वो शक्ति नहीं है।
बिल्कुल।
और परिणाम स्वरूप कई लोग समझते हैं मैं क्यों सहन करूं, क्योंकि सहन करने को लोगों ने कायरता समझ ली,
कमजोरी समझा। आपने बात की शक्ति की, शब्द भी देखें तो सहन शक्ति है, ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ समाज में अगर हम देखें तो ये लगता है कि अगर मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तो मैं कमजोर हूं, मुझे कमजोर मान लिया गया है, मैं वीक हूं। तो क्या है, क्यों ये ताकत, क्यों ये शक्ति आज कमजोरी के रूप में सामने?
यही तो विडंबना है कि जिसको आज हम शक्ति माने उसको कमजोरी मान लिया गया है। सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, परंतु क्यों इसे कमजोरी मान लिया गया है, क्योंकि अंदर में वो ताकत ही नहीं है। आज अभी मुझे किसी ने कुछ कह दिया, बस ये कौन होता है मुझे कहने वाला, तो किसने तो मुझे एक गाली दी, मैंने उसे 10 गाली दी, ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया। अच्छा, मान लीजिए उसने मुझे गाली दी, पर लगी कहाँ, परंतु हमें अपमान महसूस होता है। और अपमान क्यों महसूस होता है, क्योंकि हमारे अंदर अभिमान है, इसलिए हम सहन नहीं कर पाते हैं, अपमान महसूस करते हैं। तो वास्तव में हम इसे अपमान न माने तो सहन कर सकते, पर अपमान क्यों लगता है,
चेन की तरह
होता है, जैसे अभिमान है। अब अभिमान भी किस लिए है, क्योंकि हम आत्मा के स्वमान को भूल गए हैं। और आत्मा का स्वमान तो है शांति, प्रेम, खुशी, दया, ये सत्यता, ये सब जो आत्मा के मूल गुण है, आत्मा का मूल स्वभाव है, आज इंसान उसे भूल गया है।
बताया आपने शुरू बहन जी कि एक चेन रिएक्शन है कि किसी ने मुझे गाली दी, मैंने अपमान महसूस किया, अपमान इसलिए महसूस किया क्योंकि मुझ में अभिमान है, और अभिमान क्यों है, क्योंकि मैं आत्मा का मूल स्वरूप कहीं भूला हुआ हूं, तो प्रॉब्लम मुझ में ही है। सहनशीलता का जो पूरा आस्पेक्ट है उसको कहीं हम अगर स्व या आत्मा से जोड़ें तो हम शायद उस शक्ति को अपना पाए।
और हम ये भी कहते हैं कि मान लीजिए किसने मुझे कहा चल मुरख कहीं का, या स्टूपिड समझो, अब मुझे गुस्सा आएगा, ये मुझे स्टूपिड कह रहा है, मुझे मूर्ख कह रहा है, तो मैं रिएक्ट करूंगी और कहूंगी तू मुझे मूर्ख कहता है, अच्छा तो तू महामूर्ख है, माना ईंट का जवाब मैंने पत्थर से दिया, लेकिन मैं मूर्ख हूं तो नहीं, तो मैं मूर्ख हूं ये स्वीकार किया तभी तो महामूर्ख कहा, अगर मैं स्वीकार ही नहीं करती हूं तो महामूर्ख कहने की जरूरत ही नहीं है।
तो वो स्वीकारना ऐसा है कि रिएक्ट ही नहीं करें, कैसे स्वीकार नहीं?
बिल्कुल, देखिए हम किसी और को तो रोक नहीं सकते। आज हम घर में बैठे, अचानक आंधी आई, तूफान आया, बारिश गिरी, हम आंधी तूफान को कर्ज कर रहे हैं कि आंधी क्यों आ गई, मुझे तो बाहर जाना। अब उसे हम अगर कर्ज करते हैं या गुस्से होते हैं तो आंधी तूफान को तो हम रोक नहीं सकते हैं। हम इतना कर सकते हैं कि चलो घर बैठ जाए, कोई बात नहीं, खिड़की दरवाजे बंद कर दे, लेकिन उसको तो हम नहीं रोक सकते ना। चलो जाना भी है तो छाता ले ले, रेनकोट ले ले, हम कहें कि वो क्यों आ गया, ये तो हम नहीं कर सकते क्योंकि उनका वो कर्म है, ये उनका फर्ज है, ये उनकी।
लेकिन शीलू बहन, ये तो प्रकृति की बात हुई, प्रकृति के आगे तो हम वैसे ही हथियार डाल देते हैं, हमारे बस में नहीं होता।
तो जब प्रकृति के आगे हथियार डाल देते तो इंसान के लिए भी हम यही सोचे कि इस समय उसे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, परंतु मैंने अगर स्वीकार कर लिया तो फिर ईद का जवाब पत्थर से देते हैं, न स्वीकार करें क्योंकि मैं अपने स्वमान में हूँ, तो जरूरी नहीं कि मैं उसको एक का दस गुना कुछ कहूँ।
शीलू बहन जी, यहाँ बात पावर की भी आती है। हम सहन उस व्यक्ति को करते हैं जो हमसे ज्यादा पावरफुल है। मेरा बॉस है, मुझे डांट रहा है या मैंने ये काम नहीं किया, तो अब मैं वापस रिएक्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे डांट नहीं सकता, लेकिन अपने अंदर वो गुस्से को मैं रख रहा हूं। मेरे पिताजी हैं, मैंने होमवर्क नहीं किया, या मेरा शिक्षक है, मैं कुछ काम या पेंसिल नहीं लाया हूं या पेन नहीं लाया हूं, मुझे मार भी रहा है, मुझे गुस्सा भी कर रहा है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं सहन भी नहीं कर रहा हूं, सहन भी नहीं कर रही हूं, अंदर मुझे गुस्सा भी है। तो ये जो पावर मुझसे ज्यादा पावरफुल है वो मुझे मुझ पे अपना पावर
दबाव डाल रहा है
और मैं उसको रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा हूं। ये एक कसमसाहट जो है, ये भी कहीं कैसे अपने आप को हम मॉडिफाई करें कि हम ये एक्सेप्ट करें कि वो मुझसे पावरफुल है तो उसके पास ये है।
नहीं, हम इसलिए नहीं सहन करते क्योंकि वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है इसलिए मुझे सहन करना है, लेकिन हम सहन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वास्तव में ये ऐसे है नहीं। समझो, मैंने कोई गलती की है तो स्वीकार कर लो। कई बार हम गलती भी करते पर स्वीकार भी नहीं करते, और अगर गलती मैंने नहीं की है और फिर भी ये कह रहा है तो ये नहीं जानता है, तो भी मुझे उसके प्रति एक सहानुभूति होगी कि ये नहीं जानता इसलिए इसने मुझे कह दिया। मैंने तो समझो बच्चे ने होमवर्क भी किया फिर भी शिक्षक डांट रहा है, लेकिन बच्चा समझ जाए कि शायद ये नहीं जानता, नहीं तो मुझे डांटेगा नहीं, पर शायद नहीं जानता इसलिए डांट रहा है, तो मैं उसको अच्छी तरह से समझाऊं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अंदर में दुखी हो जाऊं क्योंकि वो मुझे डांट रहा है, मैं तो सत्यता के मार्ग पर हूं ही, तो मुझे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरा भाव यही है कि सहन करने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं अच्छा रिएक्ट नहीं करूं और अंदर ही अंदर सहन करूं, पर रिएक्ट भी नहीं करूं और वो सहन को जबरदस्ती भी नहीं करूं, सहज रूप से सहन करूं क्योंकि मैं अंदर तो समझ रहा हूं ना, और अगर कोई गलती है मेरी तो मैं बदल जाऊं।
जी, लेकिन यहाँ आज पूरे समाज में अगर हम देखते हैं, सोसाइटी के हर वर्ग में, हर कोने में, चाहे हम प्रोफेशन की बात करते हैं, चाहे हम अपने ऑफिस की बात करते हैं, हम घर की बात करते हैं, बाहर की बात करते हैं, हर जगह ये देखा जाता है कि अगर हमारे बराबर का है, मैंने एक थप्पड़ मारा तो मैं दूसरा गाल नहीं आगे करूंगी, मैं एक दूसरा थप्पड़ मारूंगी। सड़क पर निकलते हैं, किसी ने गाड़ी को हमारे टक्कर मारी तो बाहर निकल के हम ये, जैसा कि आपने एक बार पहले भी हमें कहा था कि ये क्यों ना सोचे कि बहुत बड़ी बला टल गई, नहीं, मुझे वापस उतना ही दस गुना मारना है, उसे एनर्जी का उतना ही, उतने ही ले, उससे ज्यादा।
ये सब क्यों? क्योंकि सहन करने की शक्ति नहीं।
हाँ, तो क्यों क्यों उसे शक्ति ना समझ के, अगर ये कहूं कि मैं नहीं मार रहा या मैं नहीं रिएक्ट कर रहा तो मैं कमजोर माना जा रहा हूं। वो जो जहां एक तरफ आप ये कह रही हैं कि सहन करना, टॉलरेंस एक शक्ति है, उसको मैं कैसे अपने आप को समझाऊं कि कन्वर्ट करें कि ये अगर मैं सहन करता हूं तो ये मेरा आत्मबल है।
तो इसलिए हमें अंतर में ज्ञान को मनन करने की जरूरत है। मान लीजिए किसने मुझे कुछ कहा, उस समय मैं ये अंदर में ये सोचूं कोई बात नहीं, किसी जन्म का कर्म का हिसाब किताब है, चुप तू हो गया। जैसे कोई कर्मों का हिसाब किताब है, अब मैंने किसी से ऋण लिया है तो वो वापस मुझसे लेने आएगा क्योंकि कर्जा है मेरे सिर पर, तो अवश्य वो मांगेगा। तो ये किसी जन्म का, इसी जन्म का कोई पूर्व का हिसाब किताब है और ये चुप तू हो गया, इसने कुछ कह दिया।
लेकिन एक और बात ये भी देखी जाती है कि अगर एक बार मैंने सह लिया तो मुझे बार बार सहना पड़ेगा, ये एक बात भी बार बार सालती है कि एक बार तो सबक सिखाना जरूरी है। एक बार मैंने बात सह ली तो दोबारा आएगा, तीन बार आएगा। कृष्ण तो है नहीं हम कि 100 गुनाह माफ करें। कृष्ण भगवान ने कहा था कि 100 गुनाह माफ करने के बाद मैं चक्र उठाता हूं, तो चक्र उठाना भी कभी कभी जरूरी है।
पर वो तो फिर परिस्थिति को परखना होता है। देखिए जहां पर व्यक्ति की बात आती है वहां तो सहन करना होगा, लेकिन जहां वो बार बार बात घटती है वो एक परिस्थिति बन जाती है, उसका जरूर फिर सामना करना है। परंतु कई ऐसी बातें जहां सामना करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे मान लीजिए किसने मुझे एक बार थप्पड़ मारी, पर मैं तो इतने गुस्से में ना हूं कि मैं उस थप्पड़ का जवाब मैं गोली मार दूं उसे, ये तो गलत बात है ना। अच्छा चलो थप्पड़ मारी भी, भले मैं दूसरा गाल न भी उसे दूं, जरूर नहीं कि मैं उसको दूसरा गाल दूं और कहूं कि अच्छा तू मुझे यहां भी थप्पड़ मार, तो मैं उसको समझा सकता हूं, देखो भाई बात ऐसे नहीं है, बात ऐसे है, आप इस बात को समझिए। अगर आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि बात मेरे द्वारा जो हुई वो गलत नहीं थी। लेकिन हम भी गुस्से में आकर के हम भी उसे थप्पड़ मार देंगे तो समझदारी नहीं है ना। उसने क्यों मुझे थप्पड़ मारी, क्योंकि उसने सोचा मैं गलत हूं। पर अगर मैं उसको समझा दूंगा कि ये गलत नहीं था तो वो भी समझ जाएगा। पर वो समझाने के लिए भी तो अंतर में शक्ति चाहिए। तो कई बार हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं वो भी गलत है, और कई बार हम इतने सप्रेसिव हो जाते हैं वो भी गलत है। तो सप्रेशन भी नहीं चाहिए, एग्रेशन भी नहीं चाहिए, हम उसको कहते हैं असर्टिवनेस। हम इस बात को अच्छी तरह से समझाएं, प्यार से समझाएं, शांति से समझाएं। और ये हो नहीं सकता कि अगर हम उसे प्यार और शांति से समझाएं तो वो नहीं समझेगा, वो मान जाएगा। लेकिन अगर मान लो नहीं मानता है तो हम एग्रेशन का रास्ता न अपनाएं, क्योंकि व्यक्ति है वो नहीं समझता। अभी एक पागल व्यक्ति कोई दो गाली दे रहा है चलते फिरते और बार बार वही गाली देता, तो मैं तो गाली नहीं दूंगी ना, और ये मुझे उस पर दया आएगी, बेचारा ये नहीं जानता। तो जो इस प्रकार से बुरी बातें कहता है बेचारा ये अशांत है। अब इसको हम पॉजिटिव रूप में लेते हैं, ये अशांत व्यक्ति है, इस व्यक्ति को शांति की आवश्यकता है। तो मैं इसे शांति कैसे दूं, अपने शुद्ध विचारों के द्वारा। तो इसमें हम बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बच्चा किसी आम के पेड़ पर पत्थर मार रहा है, देख रहा है बहुत सारे आम लटक रहे हैं और बड़े उसका मन जैसे ललचा रहा है वो आम खाने के लिए, तो पत्थर मारता है। लेकिन वो आम का पेड़ क्या करता है, पत्थर स्वीकार करके आम देता है, क्योंकि उसके पास आम है। और इसी प्रकार अगर मैं ये सोचती हूँ कि वो व्यक्ति तो कितना अशांत है इसीलिए ऐसे कह रहा है, अगर उसको शांति होती तो ऐसे नहीं कहता, पर मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। वो व्यक्ति नहीं जानता है कि वो प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो इसलिए मुझे उसे शांति और उसे प्रेम देना है। एक पहली बात है। लेकिन एक और बात भी है, कई बार वो मुझे बार बार कहता है, इससे सिद्ध है कि वो मुझसे चाहता है कि मैं बदल जाऊं। अब मैं बदलना भी नहीं चाहता हूं और अग्रेसिव भी हो जाता हूं, ये तो मेरी गलती है। एक बहुत सुंदर कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। जो मेरी निंदा करता है वो मेरा मित्र है, क्योंकि वो मुझे बदलने के लिए कह रहा है। और ये पहले जमाने में कहते थे कि निंदक को सदा अपने साथ
निंदक
रखो।
नेरे रखिए। तो लेकिन बात निंदा की अगर करते हैं, आपने एक बहुत अभी जो खूबसूरत बात ये कही कि जो उसके पास है, सामने वाले के पास है, वो मुझे दे रहा है, उसके पास पत्थर है वो पत्थर ही दे रहा है, मेरे पास फल है मैं फल दे रहा हूं। लेकिन एक बात और ये देखी गई है कि शायद हम अपने सामने वाले से, अगर टॉलरेंस की बात करते हैं, अगर सहनशीलता की बात करते हैं, जिनसे हम प्यार करते हैं, खासकर वहां परेशानी आती है, उनसे अपेक्षाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे, वो एक्सपेक्टेशंस अगर पूरी नहीं हो रही है, वहां अगर हमें हर्ट मिल रहा है, देन वी डोंट टॉलरेट।
तो फिर उसके लिए हमें वो अपेक्षाओं को कम करना पड़ेगा। हमारी अपेक्षा इसीलिए है क्योंकि उससे मोह है, अब यहां मोह को भी कम करना पड़ेगा। ये सब हमें बदलना है ना। अब विडंबना ये है कि हम समय से दूसरा बदले, हम न बदले, इसलिए न टॉलरेट कर पाते हैं न हम उसको बदल पाते। तो हमें बदलना है और उसको टॉलरेट करना है। तो हमें कैसे बदलना है? पहले तो हम अपनी अपेक्षाएं कम कर दें, अपना मोह कम कर दें। कैसे कम करें? जब हम ये सोचेंगे ये तो प्रभु की अमानत है। अब बच्चा पैदा हुआ तो हम क्या कहते, भगवान ने दिया। अब भगवान ने दिया तो भगवान की अमानत है ना। अब उस बच्चे में इतनी अपेक्षाएं रख बैठते हैं कि ये बच्चा ये करे, वो करे, वो करे, पर वो आत्मा तो अपने साथ कुछ पूर्व जन्म के कर्म लेकर के आई है, अपना भाग्य अपने साथ लेकर के आई है। हमने उसे जन्म तो दिया लेकिन भाग्य नहीं दे सकते। माता पिता जन्म दे सकते पर भाग्य तो आत्मा अपने साथ लाई है। अगर भाग्य भी माता पिता देते होते तो सब बच्चे समान होते, लेकिन वही धन सब बच्चों को देंगे लेकिन एक बच्चा आगे बढ़ जाएगा, एक बच्चा वहीं का वहीं रहता है। तो ये आत्मा अपने पूर्व जन्म का कर्म लेकर के आई है। अगर ये हमें समझ हो तो हम उस बात के प्रति अपेक्षा भी नहीं रखेंगे और संभाल भी करेंगे प्रभु की अमानत समझ करके। ये बहुत बड़ी बात है
जी। बहुत सुंदर आपने बात कही कि सहनशीलता या टॉलरेंस का सबसे पहला पाठ ये है कि अपेक्षाओं को कहीं ना कहीं हमें कम करना है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हैं और जब हम मोह करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस रखते ही हैं। तो अगर हम ये मान लें कि वो तो हमारी एक अमानत हमारे पास है, प्रभु की एक देन है, और उससे क्यों उम्मीद रखनी? उम्मीद हमें स्व से रखनी है, खुद पे काम करना है।
हाँ, हम उनको समझाएं, फिर आगे उसके प्रति गुड विशेष रखें, समझाएं जरूर ताकि वो समझ जाए कि ये हमारी उनके प्रति अपेक्षा है। अब अगर वो नहीं मानता तो इसमें हम दुखी न हो जाएं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर में मोह है, हमारे अंदर में वो पोजेसिवनेस है, वही बात फिर से आ जाती है। तो टॉलरेंस एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे जितने भी महान व्यक्ति होके गए हैं उन सब की महानता का आधार क्या था? उनकी टॉलरेंस।
लेकिन प्रॉब्लम ये है शीरु बहन कि आज के दौर में जब तक हम बात सुन रहे हैं तब तक तो हम इसे याद रख लेते हैं, हम ये भी मान लेते हैं कि एक शक्ति है सहन करना, दूसरे को उसको समझ के उसे माफ कर देने की हिम्मत रखना या ताकत रखना और इसको हम एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें। लेकिन वक्त पर, मतलब समय समय पर, हर रोज दिन पर दिन हमें इन सिचुएशन से वाबस्ता होना पड़ता है, ऐसे व्यक्तियों से वाबस्ता होना पड़ता है जो कहीं ना कहीं हमारी सहन करने की शक्ति को हीन कर देते हैं, हमारी टॉलरेंस पावर कम हो जाती है। हाउ टू एक्चुअली कॉम्बैट दैट कंटिन्यूअस जो एक प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, उसे कैसे मेंटेन करें कि हमें टॉलरेट करने की हिम्मत रखनी है?
हमें तो सबसे बड़ी बात है लेट गो करना होगा, करना ही पड़ेगा। और जैसे देखिए आप एक ड्रामा देख रहे हैं, ड्रामा के अंदर हर एक व्यक्ति अलग अलग अपना रोल बजा रहा है, लेकिन हम कैसे साक्षी दृष्टा होकर के देखते हैं। ये नहीं कि रोने वाले के साथ हम भी रोने लगते हैं, मारने वाले के साथ हम भी मारने लग पड़ते हैं, वो अपना रोल बजा रहा है लेकिन हम साक्षी दृष्टा है। इसी प्रकार ये संसार भी क्या है, एक ड्रामा है और इस ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं। तो इस समय उस एक्टर का ये रोल है लेकिन मेरा रोल क्या है ये मुझे समझना है। मेरा रोल है बदला नहीं लेना है लेकिन बदल कर दिखाना है। मेरा रोल है कि मैं लेट गो करूं, मेरा रोल है कि मैं फगीव एंड फगेट करूं। अब ये बातें तब मैं कर सकूंगा जब मेरे अंदर वो सहन शक्ति होगी और सहन करने के लिए एक संसार को ड्रामा देखे। ये बहुत बड़ी बात है इसके लिए
जी। बहुत सुंदर आपने बात कही आज की, लेट गो एंड फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूलना और माफ करना, ये दो एस्पेक्ट अपनी जिंदगी के हमें अपनाने ही पड़ेंगे। कुछ ऐसी टेक्निक हम आपसे आज चाहेंगे जो मेडिटेशन से इस पूरी जो ताकत की हम बात कर रहे हैं, जो शक्ति की बात कर रहे हैं, जो सहन करने का एक एस्पेक्ट है जिंदगी का, उसे कैसे हम अचीव कर सकते हैं?
तो चलिए हम इसका थोड़ा सा अभ्यास करें और इस अभ्यास के लिए हम अपने मनन शक्ति को बढ़ाएं। अगर किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो हम वो बात न सोच करके अपने स्वमान को बढ़ाएं, अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाएं, अपने भीतर में आत्मा के गुणों को अनुभव करें। मैं अशांत स्वरूप नहीं हूं, मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं नफरत स्वरूप नहीं हूं, मैं तो प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो दया स्वरूप आत्मा हूं, मैं तो एक महान आत्मा हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मुझे इस संसार में सबके प्रति दया करनी है, प्यार देना है, भगवान के समान बनना है। परमात्मा भी देखिए, इतनी सारी गालियां हम भगवान को भी देते हैं, लेकिन भगवान भी उन्हें कैसे सहन कर लेता है। तो मुझे भी, क्योंकि मैं उस परमात्मा की संतान हूं, तो मुझे सहन करना है। और जहां परिस्थिति आती है वहां घबराना नहीं है, परमात्मा को साथी बना करके उस परिस्थिति का सामना भी करना है, लेकिन अपनी आत्मा की रक्षा करनी है। अब ये चिंतन हम बार बार अपने आप को दें, हर वक्त अपने आप को दें, तो अंतर में एक शक्ति का संचार होगा और इस संसार में रहते हुए भी हम अपना जीवन कमल पुष्प के समान न्यारा और प्यारा बना सकेंगे।
बहुत सुंदर। और कहीं ना कहीं ये पूरे हमारा जो हर रोज सुबह अगर हम इस इन सभी विचारों से गुजर जाएं, इनसे रूबरू हो जाएं, तो दिन जो है वो ये साथ चलती रहेगा। ये विचार आज हमने बात की है सहनशीलता की, सहन शक्ति की, टॉलरेंस की। मानो या ना मानो, हमारी आत्मा का स्वरूप में ये शामिल है। ये सभी जो छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं, सभी मूल्यों की मान्यताओं की बात करते हैं, ये हम स्व यानी आत्मा का स्वरूप है। हम जब कहते हैं कि परमात्मा के जो भी जितने भी लोग हैं वो परमात्मा का ही अंश हैं, वो हमारे लिए अमानत हैं, तो क्यों ना अपने अंदर की सहन शक्ति को बढ़ाकर एक नए रास्ते की तलाश करें, एक नए जीवन को, अपने खूबसूरत जीवन को तलाशें। बहन शीलू, आप आज हमारे साथ आई और बहुत अच्छी आपके साथ चर्चा रही, और जिस तरह से आप, हम हर बार वो टिप्स आपसे लेते हैं कि किस तरह से मेडिटेट करके अपने दिन की शुरुआत एक बेहतर तरीके से कर सकते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहें तो आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, लिविंग वैल्यूज का एक हिस्सा बन सकते हैं। आप हमें ईमेल द्वारा या फिर फोन करके संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com और हमारा फोन नंबर है 9873666555। तो इस तरह लिविंग वैल्यू में हम जीवन के उन मूल्यों को फिर तलाशने की कोशिश जारी रखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये जो मूल्य कहीं टूटते जा रहे हैं समाज में, उन्हें कैसे फिर से जीवंत कर सकते हैं। अगली कड़ी में हम बात करेंगे नम्रता की, यानी कि ह्यूमिलिटी की। तो फिर जिंदगी में इन सभी मूल्यों को जीवंत करने का प्रयास जारी रखिए। मुलाकात करेंगे आपसे फिर लिविंग वैल्यूज में। नमस्कार।
Shanti.